Awakening with Brahma Kumaris.
Om Shanti and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Yaad hoga aapko ki पिछली बार हमने बात की थी कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके एक सही दिशा में जाया जा सकता है और वो कॉन्फ्लिक्ट जो हमें लगते थे वो मतभेद कि कभी सॉल्व नहीं किए जा सकते, अपने आप को सही परिपेक्ष में देखने के बाद वो आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। और उन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर हम अंदर गए तो हमने ये जाना कि उनका बहुत बड़ा कारण हमारी ईगो भी था। ईगो यानी कि अटैचमेंट्स, रॉन्ग इमेज, हमारा अहम। लेकिन दूसरी तरफ बात आती है स्वमान की, सेल्फ एस्टीम की। क्या है सेल्फ एस्टीम और क्या है ईगो? क्या एक बहुत थिन लाइन है? बहुत बार हम नहीं जान पाते कि मैं ईगोइस्टिक हो रहा हूँ या ये मेरी सेल्फ एस्टीम है। आज थोड़ा सा इसी को साथ मिलकर तलाशते हैं, खंगालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये एस्पेक्ट्स और किस तरह से जहां हम ईगो में होते हैं तब हमारी जिंदगी मुश्किल में आ जाती है और जब सेल्फ एस्टीम होती है तो वही मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा। ओम शांति।
ओम शांति।
सिस्टर दीपा, अगर हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं तो एक तरफ कभी हम ये मान लेते हैं कि जो ईगो है वो वही सेल्फ एस्टीम है और कभी हम सेल्फ एस्टीम को ईगो मानने लगते हैं। ये जो एक बीच का जो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे अपने हमने अपने इंटरनल मतभेदों की जब बात की थी तो ये भी आता है कि कहीं ये ईगो है या सेल्फ एस्टीम है। सो एक्चुअली अगर हम देखें तो ईगो क्या है?
अगर हम देखें कि सेल्फ एस्टीम जो है उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है वो इंटरनल होगा, वो मेरे अपने सेल्फ के आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, अपने वर्चुअल्स और कैपेबिलिटीज से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो का जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल है। मेरे एक्वायर्ड जो सेल्फ है, या तो पोजेशंस है, या तो पे है, या तो पोजीशन है, जो कुछ बाहर में मैंने प्राप्त किया, प्रतिभाएं हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं, तो भल हम महसूस करते हैं कि शायद यही समान है, यही मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो सेल्फ एस्टीम को कई बार हम ईगो को ही सेल्फ एस्टीम मानना शुरू कर लेते हैं
कि ये मेरी पहचान है, मैं इस तरह इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं ये हूँ, ये मेरी पहचान है।
तो अगर मैंने अपने सेल्फ एस्टीम को कोई एक स्किल से जोड़ा है, एक आर्टिस्ट होना एक कैपेबिलिटी, एक स्किल है जो बहुत विशेष है, जिसमें बहुत अप्रिसिएशन है, रिकग्निशन है और बहुत सचमुच वो एक बहुत सुंदर एक कला है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो कला शायद आज मैं प्रयोग कर पा रही हूँ लेकिन आगे चलकर वो कला परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, चाहे कोई आयु की वजह से, चाहे कोई परिस्थितियों की वजह से, अब वो कला हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा बेस हिल जाता है। जैसे ही हमारा फाउंडेशन हिल जाता है तो हमारा स्वमान भी हिल जाएगा, तो फिर वो स्वमान ही नहीं रहा। क्योंकि अगर रॉन्ग फाउंडेशन है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत फ्रेजाइल स्वमान है, बहुत एक ऐसे स्वमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कभी भी टूट सकता है। तो ऐसा फ्रेजाइल स्वमान जो है वो स्वमान वास्तव में नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो तब बिल्ड होता है जब हमें राइट सेल्फ स्टीम है। सेल्फ स्टीम माना, हाउ डू आई फील अबाउट माई सेल्फ नाउ, मैं अपने बारे में क्या फील करती हूँ, तो उसका आधार क्या होगा? मेरी ट्रू आइडेंटिटी पर, हाउ एम आई अवेयर ऑफ माई सेल्फ, आज मैंने अपने आप को, स्व को किस दृष्टिकोण से देखा है, किस
कितना जान रही हूं,
और कितना जान रही हूँ, कितना मैं उसको महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा करके हम महसूस ही नहीं करते। हमने अपने स्वमान को लोगों के विचारों के आधार से बिल्ड किया, पब्लिक ओपिनियन।
बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात की, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारी सही आइडेंटिटी ये है कि मैं आई एम अ पीसफुल सोल, कितनी बार भी कहते रहे लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे, और ज्यादातर हम अनुभव नहीं कर पाते,
नहीं कर पाते, हम बोलते रहते हैं लेकिन उसको फील नहीं कर पाते, और फिर कहीं ना कहीं हम फील करते हैं कि हाँ आई एम एन एंग्री सोल लेकिन मुझे पीसफुल बनना चाहिए, मुझे पीसफुल बनना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे बार बार आवेश नहीं करना चाहिए, मुझे बार बार इरिटेट नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिस क्या है, अवेयरनेस क्या है कि आई एम एन एंग्री सोल, मैं एक एंग्री पर्सन हूँ, तो कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन ही रॉन्ग है। तो अगर हमारा फाउंडेशन अपनी सेल्फ की ट्रू आइडेंटिटी है, मेरा ट्रू नेचर क्या है, व्हाट एम आई ट्रूली विद इन, तो वो हम ट्रू अवेयरनेस को चेक करते हैं तो वी आर वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम विद इन। जो हमारे इनेट वर्चुअल जो पहले भी हमने देखा है, चाहे वो पीस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो प्यूरिटी हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो ब्लिस हो, दीज आर द ट्रू वर्चुअल्स, द इनेट वर्चुअल्स ऑफ द सोल। तो जब हम इन वर्चुअल्स को, इन गुणों को महसूस करते हैं, तो आई फील दैट इनर ब्यूटी एंड देन आई बेस माई सेल्फ एस्टीम ऑन दैट ब्यूटी
एंड
आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि ये चीजें अंतर से हैं और ये अविनाशी है, सदा काल की, बिकॉज दे आर समवेयर अ गिफ्ट टू मी बाय द डिवाइन सुप्रीम, जो परमात्मा है उनकी मैं संतान हूँ, तो उनका स्वरूप, उनके नेचर को मैं अनुभव करती हूँ, वो मेरी नेचर है, वो मेरी ट्रू नेचर है, वो मैं फील जब करती हूँ और अपने उस स्वमान को महसूस करती हूँ तो मेरा सेल्फ एस्टीम मजबूत होता जाता है और उस सेल्फ एस्टीम के आधार से मैं अपने प्रति रिस्पेक्ट फील करती हूँ, आई स्टार्ट लविंग माई सेल्फ, आई स्टार्ट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, तो सेल्फ एस्टीम है, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस होता है क्योंकि मैंने अपनी सत्य जो स्वरूप है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को फील किया है, फिर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर स्वमान, मैं पीसफुल हूँ, लेकिन मैं अपने इस पीस के वर्चू को किस रूप में एक्सप्रेस करती हूँ, उसको कैसे यूज करती हूँ, उससे कैसे मैं रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव बनाती हूँ,
ये मेरी यूनिक
कारोबार, ये मेरी यूनिकनेस है, उसको मैं टास्क में कैसे यूज करती हूँ और कैसे मैं लाइट और इजी रहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी, वो मेरी यूनिकनेस है, वो मैं कैसे यूज करती हूँ, कैसे उसके द्वारा सॉल्यूशंस देती हूँ, उसको कैसे सस्टेन करती हूँ सारे दिन में, वो मेरी यूनिकनेस, उसमें मेरी क्रिएटिविटी, उसमें मेरी स्पेशलिटीज ऑटोमेटिकली दिखाई देती है।
वेरी ट्रू, यस।
सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत स्टेबल मुझे रखता है, जहाँ ईगो आ जाता है, क्योंकि वो ईगो बेस्ड एक्सटर्नली है, उसका फाउंडेशन एक्सटर्नल चीजों पर है, तो अगर वो कोई पोजीशन पर बेस्ड है तो क्या होता है कि वो पोजीशन जब तक मेरे पास है, या उस पोजीशन को जब तक संस्था में इम्पोर्टेंट माना गया है, या उस पोजीशन के आधार पर जब तक मैं डिसीशन मेकिंग में हूँ तब तक तो मुझे ठीक लगता
है, जब तक रिकॉग्निशन है मेरी उसके साथ। हाँ।
जैसे घर में भी, परिवार में भी, कोई एक नया मेंबर फैमिली में आ जाता है और अगर उसके डिसीशन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं या उसको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीशन मेकिंग में, तो जो दूसरे मेंबर्स हैं जो उसमें उसी फैमिली में है, वो अपने पोजीशन को थोड़ा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझ मेरा इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है इतना, या वो समझते हैं कि ये जैसे कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है, तो उनका बेस उनका उस परिवार में रोल है विच कुड चेंज, जैसे एक मदर है उसका रोल चेंज हो जाता है ना, थोड़े समय के बाद बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो अपना करियर चूज कर लेता है, अपना जीवन जीने शुरू कर लेता है, देन एक मदर के रूप में आप नहीं रिलेट कर सकते, अब तो आपको एक सिर्फ फ्रेंड बनना होगा, लेकिन अगर हम उस न्यू रोल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सेल्फ एस्टीम अपने बेस पर नहीं है, मैं मेरा सेल्फ एस्टीम बेस्ड है मेरे रोल पर, तो जैसे वो रोल चेंज हो जाता है एंड देन आई फाइंड कि मेरा चाइल्ड अब मेरे विचार नहीं ले रहा है, ही डजंट नीड माय डिसीजन मेकिंग, वो हर बार मुझे पूछता नहीं है और वो अपने रूप से अपनी लाइफ लिव करना शुरू कर लेता है, उसके चॉइसेस, उसके डिसीजन मेकिंग पर किसी और का भी प्रभाव है, उसकी वाइफ का है या और मेंबर्स ऑफ फैमिली है, तब मुझे वो एक
हर्ट,
इनसिक्योरिटी, एक हर्ट, एम्प्टीनेस फील होता है और मुझे लगता है फिर मैं यहाँ क्यों हूँ,
तो मेरी यूनिकनेस चार्टर हो गई,
सही बात, और फिर वो एक एम्प्टीनेस फील होता है क्योंकि स्वमान नहीं है, तो फिर अंदर ही अंदर वो एम्प्टीनेस फील होना शुरू हो जाता है, तो हम अपने वो फ्रेजाइल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ईगो से, एंगर से, उसको प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं,
वो हर्ट दिखा के, यू नो, लाइक वो सारा बहुत सारा और मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं,
तो इट हैज टू बी बेस्ड ऑन समथिंग इंटरनल, सेल्फ एस्टीम इज ऑलवेज समथिंग विच बिगिंस फ्रॉम विद इन, अंदर से ही शुरू होता है, तो बाह्य रूप से हम उसको सपोर्ट महसूस करते हैं, लेकिन इट हैज टू बिगिन फ्रॉम विद इन, अगर अंतर से वो सेल्फ एस्टीम है तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप दिखाई देता है, नेचुरल रहता है, और जो सिचुएशंस आते हैं, चाहे कहाँ डिफीट भी होगा, कहाँ सक्सेस भी होगा, तो सक्सेस में तो अगर फ्रेजाइल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम है तो सक्सेस में तो चल जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग ओके, मैंने डिसीजन लिया, इट्स बीन ओके, सक्सेस मिला, तब ठीक है, लेकिन अगर फ्रेजाइल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम है और डिफीट है मेरे साथ,
तब तो मेजर ब्रेक,
लोग मुझे पॉइंट आउट फिंगर्स कर रहे हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ऐसे गलत किया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तुम ऐसे हो, तो हम टूट जाते हैं अंदर से, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेसिव फीलिंग्स रहती है,
तो वो जो सेल्फ एस्टीम अगेन, यू नो, वो जो योयो है कि यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जो एक
हमेशा
सेल्फ एस्टीम का जो वो है कंटिन्यूअसली, मतलब मेरी सेल्फ एस्टीम या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड करने लगता है,
पब्लिक ओपिनियन का आज हमारे अपने बारे में विचार करने का पर बहुत आधार हो गया है, वो वॉइसेस हमारे साथ
प्रेशर
रहते
हैं। Oh, yes,
हमेशा
yes.
बचपन से ही जो वॉइसेस हमारे साथ रहे, चाहे पेरेंट्स है, चाहे टीचर्स है, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे समाज,
करोगे तो सही है, ये कर रहे हो तो आप सही है, ये बिल्कुल,
और हमने जो किया अगर किसी ने अप्रिशिएट किया आई फील गुड अबाउट इट, और जैसे किसी ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है आई फील लो अबाउट माई सेल्फ, तो क्या ये सेल्फ एस्टीम है? नहीं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम इज समथिंग विच इज परमानेंट. इट्स अबाउट हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट हाउ आई एम.
सो एक्चुअली यू नो फिर फाइनली ये होने लगता है कि वी आर ऑलवेज परफॉर्मिंग.
या वी आर ऑलवेज परफॉर्मिंग, और फिर काफी समय के बाद क्या होता है, बिकम्स लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग वॉट वी आर नॉट, वी आर पुटिंग ऑन अ शरारत, यू नो. एंड फिर कहा ना कहा जब उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तब वी कैन बेयर दैट प्रेशर एंड देन वी गिव अप एंड देन वी रिएक्ट. फिर वो रिएक्शन आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वी लूज आवर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, वी बिकम अपसेट, यू नो, वी फील वेरी स्ट्रेस्ड.
So definitely agar innate,
if it is based on something outside, what are the challenges that we can see? We can go into more on that ki bahar se, you know, if it's based on possessions then what happens?
Yeah,
if it's based on position, it's based on you know other things from outside, how it's very fragile. And then fir ego aa jata hai na,
jab humne ye dekha ki wo self esteem hum puri tarah se depend kar rahe hain ya base kar rahe hain bahari vatavaran par ki bahar ka response kaisa hai, to unke badalte hi हमारा जो सेल्फ एस्टीम का जो लेवल्स है वो बदलने शुरू हो जाते हैं. तो वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर वहाँ चेंजेस आने लगते हैं?
जैसे वहाँ चेंज आ जाता है तो आई डोंट फील गुड अबाउट माई सेल्फ, और फिर हम उस फ्रजाइल जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो
हम रिएक्शनरी हो जाते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं,
डिफेंसिव हो जाते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं. तो हम देखते हैं जैसे एक वॉलनट एटीट्यूड हो जाता है. वॉलनट जो है अंदर से बहुत फ्रजाइल है, लेकिन जैसे ही उसको आपने प्रेशर से तोड़ने का प्रयास किया तो अंदर से वो टूट जाता है. बाहर से उसका एक्सटीरियर कैसे होता है? इट्स वेरी हार्श. तो ऐसे हम देखते हैं कि जहां भी हम देखते हैं बहुत सारा एग्रेशन है, कहां ना कहां हम देखते हैं ईगो है, कहां ना कहां डिफेंसिव एटीट्यूड है. कोई भी बात उसको कहो ना तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा, कोई भी बात को तुरंत उसमें आक्रमण हो जाएगा. कोई भी प्रकार से उनके विचार या उनकी आइडिया या उनकी कोई भी बात को अगर आपने कहा कि ये ठीक नहीं है,
they can't take it.
तो वो अंदर में बहुत फ्रिजिलिटी है. लेकिन अगर हम देखें मैंगो एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं कि मैंगो जो है अंदर से कितना स्ट्रांग है, तो इट्स दैट स्ट्रांग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम इज देयर. तो फिर हम डिफीट को भी एक्सेप्ट करते हैं, हम क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ठीक है ये व्यक्ति कुछ कह रहा है, अगर इसमें कुछ वैल्यू है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ. बट आई ओनली नो हु आई एम,
एंड आई
नो हाउ आई फील, आई नो हाउ गुड आई एम, आई नो हाउ पावरफुल आई एम, बट देन आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो कोई वीकनेसेस है तो अगर इनके क्रिटिसिज्म से कुछ मुझे उसमें कोई इंसाइट मिलता है और आई कैन चेंज, देन आई टेक इट एंड देन आई मूव अहेड. बट बिकॉज आई नो हाउ आई एम and I feel good about myself, I'm not disturbed by that criticism. लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर ego है तो कुछ भी थोड़ी सी बात अगर किसी ने उसको कह दी या उसको कहा कि आपके बारे में ऐसे किसी ने कहा,
they can't tolerate. It's amazing. Yes, I've seen people reacting actually. So what to do?
And then वो क्या कहते हैं, after all मेरा self respect है ना, आखिर मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट.
हाउ डेयर दे से दिस, हाउ डेयर, मेरे
समान को तोड़ दिया. बट एक्चुअली वो समान नहीं रहता.
अच्छा, वो कोई तोड़ नहीं सकता,
तोड़ नहीं
आपके समान को कोई कैसे तोड़ लेकिन ज्यादातर लोग अगर आपका कोई लव्ड वन या आपके जो करीबी हैं वो अगर इस तरह से हैं तो इतने रिएक्शनरी, सो हाउ टू एक्चुअली हैंडल. बहुत से लोग जो हैं उनके ये सवाल आते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऐसे रिएक्शनरी हैं, उनसे कुछ भी बात करो वो हमेशा छोटी सी भी बात जो है वो उस पर ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं. सो हाउ, व्हाट टू डू विद देम?
तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को जब तक उनको एक डीप सेंस ऑफ यू नो एक्सपीरियंस ना हो कि उनका ट्रू सेल्फ क्या है, यू नो, उनके प्रति अगर हम उनको वो समझ दें या उनके प्रति थोड़ा समय बिताकर उनके साथ उसकी बातचीत करें कि ये चीज जो है रिएक्शन जो है एग्रेसिव बिहेवियर जो है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान दे रहा है, यू नो एरिया में नुकसान देता है, क्योंकि एंगर और ईगो आजकल कई बीमारियों का कारण बन रहा है. अच्छा, रिलेशनशिप्स में चैलेंज होता है क्योंकि वही व्यक्ति इंडिविजुअली भले बहुत यू नो एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत केपेबल हो, बहुत पोटेंशियल हो, लेकिन अगर उसको नेतृत्व करना है एक टीम को तो वो ईगो के वजह से लोग उनके साथ काम करना नहीं चाहते.
टीम वर्क हो ही नहीं सकता
है. तो कहीं ना कहीं इज लूजिंग आउट. और अगर फैमिली में भी देखो तो व्यक्ति कितना भी केपेबल हो, कितना भी वो जवाबदार हो, लेकिन अगर संबंधों में बार बार टकराव आ रहा है, वो व्यक्ति बहुत एग्रेसिव है, वो व्यक्ति जो है वो डोमिनेटिव है, तो बच्चे भी आज उसकी बात सुनना नहीं चाहते.
कितना भी लविंग होगा,
कितना भी लविंग, तो वहाँ टूटना शुरू हो जाता है वो संबंध. तो अगर हम उनको ये महसूस कराते हैं कि इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है, और यही चीज का अगर आधार, वही स्वमान का आधार अगर कोई चीज अंतर से हो, समथिंग विच इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम विद इन, विच दे हैव, उनके पास भी वही वर्चुअल्स और कैपेबिलिटीज है, अगर वो महसूस कर दे, इफ दे हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ हाउ गुड दे आर फ्रॉम विद इन, अगर वो अपने अंतर की वो शक्तियों को महसूस कर ले, फिर हम देखते वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. देन दे डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड टू मेक देम फील गुड. फिर उनको कोई भी चीज का आधार लेने की कोशिश
और ऐसे लोगों के साथ ज्यादातर ये भी देखा गया है कि दे रियली लॉट ऑफ टाइम आस्क कि वो क्या कह रहा था मेरे बारे में.
हाँ जी, हमेशा पूछते रहेंगे.
हाँ, मैं आई कैन एक्चुअली वाउच फॉर इट, बिकॉज मैंने देखा है कि जहाँ ये इतना रिएक्शन है, छोटी छोटी बात को रिएक्शन है, वहाँ ये भी इन्फॉर्मेशन जरूर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इट रियली मैटर्स अ लॉट कि वो व्यक्ति क्या, कोई लोग क्या कह रहे हैं.
मेरे सामने तो ये कह रहा था, मेरे पीछे क्या कह रहा था,
हाउ डज इट मैटर, बट दैट बिकम्स सो इम्पेरेटिव, आई एम सो इम्पोर्टेंट. सो ये कहीं ना कहीं एक टोटल डिपेंडेंसी, मेरी अपनी सेल्फ एस्टीम की डिपेंडेंसी.
आपने अपने मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसी को हैंड ओवर कर लिया है, उसे पता है कि उसे को वो क्या कह सकता है जिससे आपको गुस्सा आ सकता
है.
चाबी उनके हाथ में है.
बिल्कुल, बहुत सुंदर.
वो आपको खुश भी रख सकता है, वो आपको दुखी भी बना सकता है, वो आपको क्रोधित भी कर सकता है, वो आपको एक्साइटेड भी कर सकता है, उसके हाथ में.
और आप कठपुतली की तरह, और रिएक्शन आपका हो रहा है,
रिएक्शन
आपका. तो ये लगता ये है कि आप जो है वो टेक ओवर किया हुआ है, आपने टेक ओवर किया है कि आप एग्रेसिव हो रहे हैं, बट बेसिकली रिमोट कंट्रोल तो किसी और
उनके पास है. लेकिन सेल्फ एस्टीम माना आई एम द मास्टर, मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड की मास्टर हूँ. बिफोर आई स्टार्ट ट्राइंग टू बी अ मास्टर ऑफ अदर पीपल, हम दूसरों के मालिक बनने की कोशिश करते हैं या सिचुएशंस को मास्टर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले मैं अपनी मास्टर हूँ. तो जैसे मैं अपने उस सेल्फ मास्टरी को एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं अपने इमोशंस की भी मास्टर हूँ, इमोशंस आ रहे हैं, कई फीलिंग्स आ रही है, लेकिन आई कैन स्टॉप, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन चेक विच इज द राइट वन, विच इज कनेक्टेड टू माई सेल्फ एस्टीम. आई चूज दैट थॉट, मैं वो यू नो फीलिंग को, वो पॉजिटिव थॉट का चुनाव करती हूँ, एंड देन आई एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू दैट, आई रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट. तो जैसे ये सेल्फ मास्टरी का एक्सपीरियंस होना शुरू करता है ना, तो व्यक्ति को अंदर से एक बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है. आई फील वेरी गुड अबाउट माइसेल्फ, बिकॉज
नोबडी कैन एक्चुअली डू एनीथिंग टू मी, नोबडी कैन हर्ट मी, नोबडी हैज अ कैपेबिलिटी टू
हर्ट मी, नोबडी कैन डिस्टर्ब मी,
आई कैन एक्चुअली लीड अ लाइफ,
नोबडी कैन मेक मी अपसेट, नोबडी कैन ऑफेंड मी, यू नो.
लेकिन ये जो ये पूरा एस्पेक्ट है एक सही पहचान के साथ, सेल्फ एस्टीम को यू नो के साथ रहने का, ये कैसे हम अनुभव कर सकते हैं?
इसके लिए हमें अपने साथ थोड़ा समय बिताना होगा जरूर, और अपने वो आंतरिक जो स्व है, जो ट्रू आइडेंटिटी, उसको फील करना, उस अवेयरनेस को सस्टेन करना बहुत जरूरी है. सो दोस लिटिल ड्रॉप्स ऑफ टाइम, यू नो, वो कुछ एक मिनट जो हम बीच बीच में अनुभव करते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी अवेयरनेस की सीड को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं कि मैं ये आत्मा, ये सूक्ष्म शक्ति हूँ, और मैं ईश्वर की संतान हूँ, इसलिए ईश्वर के हर गुण और शक्ति की मैं मालिक हूँ.
ऑलरेडी हूँ, आई ओन देम,
आई ओन देम, आई एम देम, आई हैव अ राइट टू दैट इनहेरिटेंस ऑफ वर्चुज एंड पावर्स. मैं हूँ ये, इसलिए मुझे उसको ढूंढना नहीं है, मुझे उसके ऊपर कोई मांगना नहीं है, मुझे उसको कोई डेवलप करना नहीं, मैं हूँ. तो ये जैसे वो अंदर का एक सेल्फ रिस्पेक्ट आता जाता है, एक स्वयं के प्रति आदर फील होता है, और एक अंतर की एक शक्ति महसूस होती है, वो पावर मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराने के लिए बहुत मदद करता है. आई फील वेरी स्ट्रांग विद इट. जब मैं वो स्ट्रेंथ फील करती हूँ, देन आई वुड लाइक टू रिमेन इन दैट स्ट्रेंथ, आई वुड लाइक टू रिमेन इन दैट फीलिंग ऑफ सेल्फ मास्टरी,
एंड देन आई थिंक देन द सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली फॉलोस,
एंड देन सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है. जो आज हम देखते हैं ना कि बात बात में हम कहते भी हमारा कॉन्फिडेंस हम लूज कर लेते हैं, बच्चे भी हैं, कोई बात
पे विश्वास नहीं रहता.
हाँ जी, खुद पे विश्वास नहीं रहता है. व्यक्ति हैं, बहुत सक्षम है, बहुत सक्सेसफुल है, कई अवार्ड्स मिले हैं कारोबार के लिए, बहने हैं, गृहणियां हैं, हाउसवाइफ से बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन कोई एक बात में असफलता हुई या कोई एक रिलेशनशिप में चैलेंज आया, कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं. तो वो नहीं होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद इस सिचुएशन में मैं अपनी उस कैपेबिलिटी को यूज नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम दैट, सो लेट मी गिव माई सेल्फ टाइम, लेट मी एम्पावर माई सेल्फ, मैं अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाऊ और फिर उस वर्चुअल और कैपेबिलिटी को यूज करूँ, बट आई एम दैट. जब भी मैं क्रोध कर रही हूँ, तब भी इंटरनली आई एम पीसफुल सोल, इस सिचुएशन में वो मैंने एक्सेस नहीं कर पा रही अपने उस वर्चुअल को, उस इनेट यू नो नेचर को, इसलिए वो क्रोध का अनुभव हो रहा है. तो ये जो क्लैरिटी है, कि कोई भी वीकनेसेस है, कोई भी जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, ये एक्वायर किया हुआ है. इसलिए वो जैसे अंधकार है, तो जैसे वो वर्चूज की फील आती जाती, वो रोशनी आती जाती.
वो अंदर से ही आनी है, वो बाहर से कहीं रोशनी
बाहर
नहीं
से नहीं आनी. बाहर से हमने कोशिश की, लेकिन बाहर से जो भी चीज है वो टेम्पररी है, वो परिवर्तनशील है. तो वो चीज थोड़े समय के लिए आपको खुशी देती है, आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाती है, लेकिन जैसे वो चीज बदलती है, आप फिर से उसी एम्प्टीनेस में आ जाते
हैं.
और फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं. तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है तब फील होता है जब वो एक राइट सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम है. आई एम फील गुड अबाउट माई सेल्फ एज आई ट्रूली एम, एंड देन आई हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट. मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे अपने प्रति रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ. और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट नेचुरली बनाता है. हर एरिया ऑफ लाइफ में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है.
एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट यस, इट विल हैपन, आई विल डू इट, और आई कैन डू इट.
तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आती है, लेकिन आई थिंक यस आई कैन डू इट. इट्स अ चैलेंज, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें समाधान मिल सकेगा. आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ
सोल्यूशन. विदाउट दैट अनस्टेबिलिटी, यू नो, विदाउट दैट एनर्जी के जो स्पर्ट्स, जो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके बिना स्टेबल
कंसिस्टेंसी रहती है. और फिर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं. यू नो, आज हम देखते हैं मोटिवेशन जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज.
वो भी हम बाहरी तलाश.
आई ऑलवेज वॉन्ट समवन एल्स टू टेल मी समथिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ. आई ऑलवेज वॉन्ट समवन टू बी अ काउंसलर, यू नो, एक कोच कोई मेरे साथ हो, चाहे घर में है, चाहे बाहर वर्क प्लेस पर है, चाहे समाज में. आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर समवन, यू नो, समवन हु कुड ऑलवेज बी दैट गाइड, दैट काउंसलर, दैट कोच. बट हम देखते हैं कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आती है वे यू विल नॉट फाइंड समवन. यू विल नॉट फाइंड मे बी दैट पर्सन हु इज अ सपोर्ट, कोई व्यक्ति है कोच, लेकिन वो आज फिजिकली अवेलेबल नहीं है. आज उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं
है. अपने कॉन्फ्लिक्ट में कितना है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जर्नी पे है. एक्चुअली
सही बात है. तो मुझे सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. और वहां हम देखते हैं कि जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो उनका जो सपोर्ट है वो हमें वो सेल्फ मोटिवेशन में बहुत नेचुरली फील कराता है. फील आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ, आई कैन कीप सपोर्टिंग माई सेल्फ. जब भी मैं अपने आप से बातचीत करती हूँ तो एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक. जैसे कोई भी हमारे सामने कोई एक मानसिक अस्थिरता में आता है, कोई भी व्यक्ति आता है हमारे सामने, कोई फ्रेंड है, कोई हमारे फैमिली मेंबर है, वो कहता है मैं बहुत यू नो लो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम में हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं? यू नो, एनीवन इज डिप्रेस्ड, हम whom we love, क्या करते हैं?
हम उनको मोटिवेट करते हैं.
हम उनको मोटिवेट करते हैं. हमने ये तो नहीं कहते नहीं तुम तो है ही ऐसे, तुम कभी नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे. हम कभी ऐसे नहीं करते. वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग देम विद पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स, और सॉल्यूशंस देते हैं. ऐसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज माई सेल्फ. यू नो, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. यू नो, तो आई कनेक्ट विद माई सेल्फ एज यू नो अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड आई कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ, फाइंडिंग दैट आई ऑफ स्टॉर्म. चारों ओर हमेशा तूफान रहेगा ही, लेकिन जो आई ऑफ द स्टॉर्म है, कभी भी हम देखते हैं कि तूफान के बीच का जो एपी सेंटर है वहां कामनेस रहता है. तो जो एक अच्छा कैप्टन है, जो समझदार अनुभवी कैप्टन है, वो जब देखता है कि अब इस तूफान से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ इस शिप को, तो वो उस आई ऑफ द स्टॉर्म तक उसको पहुंचाता है. लेकिन यू हैव टू गो अगेंस्ट द वेव्स, द मूवमेंट ऑफ द वेव्स. तो हमें कुछ समय लगेगा ये अभ्यास करने के लिए, अपने वो स्वयं तक, आंतरिक स्वर तक पहुंचने के लिए. लेकिन एक बार हम उस आई ऑफ द स्टॉर्म की फीलिंग आ गई, हमने उसको एक्सपीरियंस किया, हमने अपने ट्रू सेल्फ एस्टीम को अनुभव करना शुरू किया, देन इट बिकम्स वेरी नेचुरल. वी लव दैट फीलिंग.
वी वुड लाइक टू फील. आधी तूफान जो है उससे तो गुजरना ही,
थोड़ा गुजरना पड़ेगा.
बिल्कुल. और उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, यू नो, एनर्जी अगेंस्ट
राइट. और वो आंधी तूफान क्या है? वो वॉइसेस, लोगों के जो बोल हैं, लोगों के हमारे जो अनुभव हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बाधाएं बार बार क्रिएट करेंगे. लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम ये हो. या हम परिस्थितियां देखेंगे, वो हमारे हितकारी नहीं लगेगी, हमको लगेगा हमने ये किया लेकिन हमें उसमें कोई यू नो रिजल्ट में हमें सक्सेस नहीं मिला. लेकिन उस समय भी हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है. द चैलेंज इज नॉट कि हम कभी फेल ना हो, लेकिन चैलेंजिंग वो है कि हम हर फेलियर से राइज हो सके. क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी असफल ना हो, लेकिन अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो असफलता को भी स्वीकार करके उससे उठकर आगे बढ़ सके. तो सेल्फ एस्टीम वास्तव में हमारा बेस है, इवन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है. जीवन में सदा अगर हम देखें तो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए भी ये बेस, ये की है. तो ये हमारे हाथ में है.
कि ट्रू सेल्फ को पहचान के रखना और उसके बाद ये बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती है, ऑल फॉल इन प्लेस एक्चुअली। सो दीपा, आज बहुत अच्छी बातचीत रही, क्योंकि ईगो और सेल्फ एस्टीम के बीच की जो थिन लाइन, कभी हम बहुत बार ये हो जाता है कि हम ईगो को ही सेल्फ एस्टीम मान लेते हैं,
और कहा भी जाता है कि जहाँ स्वमान है वहाँ मान अपमान में हम स्थिर रहेंगे, लेकिन जहाँ अभिमान है वहाँ मान में तो हम स्वीकार कर लेंगे लेकिन अपमान को स्वीकार नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
बहुत सुंदर आपने बात की, तो स्वमान को सही मायने में, स्वमान और अभिमान के इस पूरे परिपेक्ष को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, और यहाँ मेडिटेशन और ज्ञान का जो पूरा हमारे पास एक सार है वो हमारी बहुत मदद करता है। जैसे दीपा, आज की पूरी बातचीत के लिए जहाँ हमने ये जाना कि सेल्फ एस्टीम सही मायने में क्या है, उन सभी वर्च्यूज को जो इनेट वर्च्यूज हैं, जहाँ जो कहीं ना कहीं एक्वायर्ड नहीं है, उनके साथ अगर हम लेकर चलते हैं तो वही हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और फिर वो कॉन्फिडेंस जो हमें बाहर कहीं तलाशना पड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर वही सेल्फ मोटिवेशन का भी कारण बन सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस पहचान को, अपनी उस पहचान को सही मान रहे होते हैं, जो हमने बाहर से ली है, पहचान मानी है, वो कभी भी हमारी सही पहचान नहीं होती, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करती है, बाहरी स्थितियों पर डिपेंड करती है। खुद की सही पहचान ही सही सेल्फ एस्टीम की तरफ हमें लेकर जा सकती है, और ये पूरे प्रोसेस में हमने देखा है कि यही सेल्फ एस्टीम हमें सेल्फ मोटिवेशन की तरफ, जिस मोटिवेशन को भी हम बाहर तलाशते हैं, अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हर बार बातचीत के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अपने ही ऊपर आ जाता है। तो चेंज हमें ही होना है, समझना हमें अपने आप को है, ये पूरा प्रोसेस है खुद को समझने का एक्चुअली। और इसमें भी अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर आगे भी बढ़ेगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अब इजाजत चाहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।